ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने प्राप्त किया विश्वास मत। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में दिख रही समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने संबंधित सरोकार वाला निकायों के पदाधिकारियों से की चर्चा। सरकार वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। 10 साल के जनयुद्ध के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में सत्य निरूपण तथा लापता छानबीन आयोग के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय न लेने का नेकपा माओवादी केंद्र ने किया आग्रह। और 5% के साथ विकास लक्ष्य को किया चीन ने निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ नौ दलीय गठबंधन ने कहा है कि उसने उन गतिविधियों की ओर गंभीरता से ध्यान आकर्षित किया है जो संविधान और लोकतांत्रिक गणतंत्र की भावना के खिलाफ है। आज शाम प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में हुई संयुक्त बैठक में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि संविधान से मान्यता प्राप्त तथा कथित पदों के नाम पर की जा रही असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ वे एकजुट हैं और उनका समर्थन करने वाली गतिविधियां अलोकतांत्रिक है। बैठक ने राजतंत्र की वकालत करने वाले दुर्गा प्रसाई की गतिविधियों को लक्षित करते हुए ऐसा निर्णय लिया है। इसी तरह बैठक ने संक्रमणकालीन न्याय के प्रबंधन में एकजुट होने का निर्णय किया है। संयुक्त बैठक के निर्णय में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा के अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुर, नेपाल समाजवादी के डॉ बाबूराम भट्टराई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के रंजीता श्रेष्ठ, जनमत पार्टी के अब्दुल खान और राष्ट्रीय जनमोर्चा के चित्र बहादुर केसी ने हस्ताक्षर किये। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने विश्वास मत प्राप्त किया है। आज की प्रदेश सभा की बैठक में हुए मत विभाजन में मुख्यमंत्री शाह को बहुमत प्राप्त हुआ। उन्हें 41 मत प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री शाह को नेपाली कांग्रेस की ओर से 19, नेकपा माओवादी केंद्र की ओर से 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की ओर से 7, नेकपा एकीकृत समाजवादी की ओर से 4 और स्वतंत्र की तरफ से 1 मत प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में दिखे समस्याओं, चुनौतियों और सुधारों के विषय में सरोकार वालों के साथ विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर, अर्थ सचिव और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक और बैंक वित्त क्षेत्र में दिखे समस्याओं, चुनौतियों और सुधारों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस सहकारी समितियों, बैंक ब्याज दरों को लेकर वित्तीय क्षेत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार गंभीर है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने पूर्व माओवादियों को एक साथ आने का आग्रह किया है। आज आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने माओवादी आंदोलन के सभी समूहों को पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि यद्यपि माओवादी आंदोलन कमजोर नहीं है, लेकिन इसका अलग अलग गुटों में विभाजित होने के कारण इसका प्रभाव कम हो गया है और इन्हें फिर से एकजुट होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि माओवादी अलग अलग धारों में बटे हुए हैं, ये महसूस करते हुए प्रतिक्रियावादी भ्रम फैलाकर उन्हें घेरने की साजिश कर रहे हैं। नेकपा माओवादी केंद्र ने 10 सालों का जनयुद्ध के दौरान हुए घटना के विषय में सत्य निरूपण तथा लापता छानबीन आयोग द्वारा काम हो रहा है, इसलिए आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर के विषय पर असर पड़ने के हिसाब से कोई भी निर्णय न करने का आग्रह किया है। आज माओवादी केन्द्र के महासचिव देव प्रसाद गुरुंग ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए देश के मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजनीतिक शक्ति तथा पार्टियों को एकजुट होने का आग्रह किया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी समक्ष प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने सरकार की वार्षिक रिपोर्ट पेश की है। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति भंडारी समक्ष प्रधानमंत्री प्रचंड ने सरकार की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सरकार ने कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया है। रिपोर्ट में पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण भी शामिल है। ओखलढुंगा की चीसंग गढ़ी गांव पालिका से जिला मुख्यालय जा रही जीप राहुटार नजदीक दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 12 लोग घायल हुए हैं। ओखलढुंगा के प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक दीपक केसी ने बताया कि दुर्घटना में चीसंगगढ़ी वार्ड नंबर 3 के 70 वर्षीय भक्त बहादुर थापा और 52 वर्षीय मीन बहादुर श्रेष्ठ की मौत हो गई है। हादसे में घायल हुए 10 लोगों का इलाज काठमांडू स्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में चल रहा है, वहीं दो लोगों का उखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने अपने नए 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत आज से की है। इस दौरान चीनी सांसद ने साल 2023 के लिए अपने विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया है। देश की रबर स्टेट कहे जाने वाले सांसद ने अपने नए सत्र की शुरुआत के साथ ही देश के विकास लक्ष्यों को 5% से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 67 वर्षीय प्रधानमंत्री ली केकियांग ने इस दौरान अपने कार्यकाल की अंतिम रिपोर्ट नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में पेश की और अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दिया। इस दौरान चीन ने 2023 के लिए 5% विकास लक्ष्य निर्धारित किया है जो दशकों में सबसे कम है। ली ने अपने संबोधन में कहा कि चीन ने पिछले 10 सालों के दौरान अपने जीडीपी में 6.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडारण 10 खरब डॉलर से अधिक पर स्थिर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने आर्थिक दृष्टि से काफी बेहतर वृद्धि की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने प्राप्त किया विश्वासमत। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में दिख रही समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने संबंधित सरकार वाला निकायों के पदाधिकारियों से की चर्चा। सरकार वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। 10 साल के जनयुद्ध के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में सत्य निरूपण तथा लापता छानबीन आयोग के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय न करने का नेकपा माओवादी केन्द्र ने किया आग्रह है। और 5% के साथ विकास लक्ष्य को किया चीन ने निर्धारित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।